लेकिन अब आस्था को यूं करीब देखकर, उसके खूबसूरती को देखकर, वो अपनी सोचने समझने की सारी शक्तियां खो बैठा था और वो बस बेतहाशा आस्था को देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि आस्था को देखकर अपने जन्मों जन्म की प्यास बुझा रहा था। जल्दी उसने आस्था को इस तरह से गोद में पकड़कर बेड पर लेटा दिया, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब आस्था और डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति में कैसे निकले और अरमान को कैसे होश में लाए, क्योंकि अरमान की आंखों में इस वक्त सिर्फ आस्था को पाने का जुनून ही दिखाई दे रहा था। अरमान आस्था की खूबसूरती देखने के बाद अपनी सुध-बुध खो बैठा था और अब उसकी आंखों में आस्था को पाने की इच्छा बढ़ चुकी थी। वो केवल उसे पाना चाहता था, इसीलिए वो उसकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा था। वहीं आस्था डर के मारे दुबककर एक सिरे पर बैठ गई थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने साथ किसी इस तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता था जो कि कुछ दिनों के बाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो अरमान को कभी भी अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। अरमान प्यासी नजरों से आस्था की ओर बढ़ रहा था। आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। तभी आस्था की नज़र उसके ठीक बराबर में रखे हुए आधे गिलास पानी पर गई और आस्था ने जल्दी से वो पानी का गिलास उठा लिया और सीधा अरमान के ऊपर पानी फेंक दिया। जैसे ही अरमान के ऊपर पानी फेंका गया, अरमान अपनी होश में वापस आया और उसने अपने मुंह पर पड़े उस पानी को पोंछते हुए लाल आंखों से आस्था को घूरने लगा। अरमान का ये किलर लुक देखकर आस्था डरकर सहम गई थी। उसे उस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो खुद में ही सिमटी सी जा रही थी। डर की वजह से वो बेड पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वहीं अरमान जैसे ही अपनी होश में आया, उसकी नजरें आस्था पर ही जमी हुई थीं और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। अचानक अरमान ने गुस्से से आस्था की ओर देखते हुए कहा, ओ तो तुम मेरे साथ ये ट्रिक यूज करना चाहती थी। हाँ, इसलिए तुमने मुझे सड्यूस करने की कोशिश की और अब ये इस तरह से डरने का, मासूम बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम। ये कहते हुए अरमान आस्था के थोड़े करीब गया। अब आस्था एक बार फिर अरमान को अपनी ओर आता हुआ देखकर बुरी तरह से घबरा गई और वो हड़बड़ाकर बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। आप ही हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज ट्रस्ट मी। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अचानक अरमान के होठों पर एक साइकियाट्रिस्ट स्माइल आ गई और उसके इस तरह की स्माइल से आस्था को और भी ज्यादा डर लग रहा था और अरमान ने इस तरह से उसकी ओर अपने कदम बढ़ाना जारी रखा। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख बेड के सिरे के कोने पर बैठ गई थी और कहने लगी, हमने कुछ नहीं किया है, हम ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते हैं, हम इस चीज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये कहते हुए आस्था सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मासूम सी बकरी है और अरमान भूखे शेर की तरह अभी उस पर टूट पड़ेगा और आज तो वो उसकी जान ही ले लेगा। ये सोचते हुए आस्था पूरी तरह से सिमट कर बैठी हुई थी और थर थर कांप रही थी। अब अरमान उसके एकदम करीब गया और अपने हाथ को उसकी तरफ टिकाकर उसके चेहरे पर झुक गया। आस्था के चेहरे के भाव काफी ज्यादा बुरे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो पड़ेगी। एक बार फिर उसने कुछ कहने की कोशिश की, हमने कुछ कुछ नहीं किया है, हमने आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया है। जैसे ही वो इससे आगे कुछ कह पाती, तुरंत अरमान ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखी और उससे बोला, चुप पत, और फिर उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम मेरे साथ बेड पर आना चाहती हो, इसीलिए तुमने इस तरह से मेरे कपड़े पहने और मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मुझे सड्यूस करने की कोशिश की और मैं तुम्हारी खूबसूरती में वाकई बह गया था जो मैंने तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था को तो ऐसा लगा मानो कि उसके शरीर में एक साथ कितने ही जहरीले सांपों ने काट लिया हो। वो अपने बारे में ऐसी बातें कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ तो साफ साफ उसके तथाकथित पति उसे ये सारी बातें कह रहा था। एक बार और उसने गहरी सांस ली और अपने आप को थोड़ा सा बेहतर महसूस कराते हुए कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। आस्था की बात सुनकर अरमान के भाव एकदम से बिगड़ गए। हालांकि आस्था ये बात कई बार बोल चुकी थी, लेकिन अरमान तो उसके मुंह से ये सुनना चाहता था कि अरमान की पर्सनैलिटी से, उसकी डैशिंग, उसके आकर्षक शरीर की ओर वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई है, इसीलिए वो उसके साथ बेड शेयर करना चाहती है। लेकिन जब बार बार आस्था एक ही बात बोलती रही, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तब एक बार फिर अरमान उसकी आंखों में घूरते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। आस्था जो किसी भी पल रोने वाली थी, उसने एक बार फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए अरमान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि आप मुझे कभी भी स्पर्श करें। आपके साथ बेड पर आना तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही आस्था ने ये शब्द अरमान को कहे, उसकी पुरुष अहंकार को ठेस पहुंची और उसके दिमाग की सारी नसें झनझना गई। नाम के लिए ही सही, लेकिन वो उसकी पत्नी थी और वो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी को उसके स्पर्श से भी समस्या है। उसने आज तक न जाने कितनी ही सारी लड़कियां देखी थी जो उसकी एक नज़र पाने के लिए क्या क्या तरीका यूज किया करती थी। इतना ही नहीं, केवल अरमान के एक इशारे पर वो अपना सब कुछ तो कुर्बान करने के लिए तैयार रहती थी। वास्तव में वो जिस लड़की पर भी उंगली उठा दे, वो लड़की उसके कदमों में बिछने के लिए तैयार रहती थी। और यहाँ ये मामूली सी लड़की उसे कह रही थी कि उसे उसके स्पर्श से समस्या है। अरमान का गुस्सा उसके हद से बाहर हो गया था और अचानक से उसने एक हाथ की उंगलियों को अपने सर पर रखकर टैप करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में लगभग ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि खून निकल आया हो। वहीं आस्था की आंखें डर के मारे लाल हो रही थीं, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अरमान सिन्हानिया आज उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसने ये बातें अरमान को कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। साथ साथ अरमान को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये मामूली सी लड़की, जिसकी ओर मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, वो लड़की मुझे अपने साथ बेड शेयर करने से मना कर रही है। इतनी हिम्मत! अचानक से अरमान ने थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। उसके ऐसा करते ही आस्था मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रही थी। उसके आंसू अपने आप बहना शुरू हो गए थे। तब अरमान गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए बोला, मेरे साथ ज्यादा नाटक करने की या ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना, समझी? जैसे ही अरमान ने बड़े ही कसकर उसके बालों को पकड़कर कहा, आस्था के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। लेकिन अरमान की आंखों में उसके लिए इतना सा भी कोमल भाव या इतना सा भी दया नहीं थी। वो तो केवल उसे अपनी लाल सुर्ख आंखों से इस तरह से घूर रहा था मानो कि वो इसी वक्त आस्था को आंखों ही आंखों से खा जाएगा। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। वो समझ चुकी थी कि उसकी औकात नहीं है कि वो अरमान सिंघानिया के सामने खड़ी हो सके, और फिर जल्दी ही उसकी आंखों के सामने उसकी नानी माँ का खून से लथपथ चेहरा आ गया था।
उसे लगने लगा था कि अगर उसने अरमान को नाराज कर दिया तो अरमान एक पल नहीं लगाएगा उसके परिवार की जान लेने में। उसे अपनी नानी माँ की सबसे ज्यादा फिक्र थी, और इस तरह से अरमान के साथ बहस करके वो अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। अब ये सब सोचते ही अचानक आस्था का गला पूरी तरह से सूखने लगा था, और अचानक से उसने कहा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हालांकि आस्था की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती सरासर अरमान की थी, लेकिन इस वक्त वो अरमान से माफ़ी मांगकर उसके अहंकार को संतुष्ट करना चाहती थी। हालांकि उसका दिल ही जानता था कि उसे इस वक्त अरमान से माफ़ी मांगना कितना ज़्यादा जहर जैसा लग रहा था, क्योंकि उसने उस गलती की माफ़ी मांगी थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए उसके परिवार की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने फटाफट से अरमान से माफ़ी मांगी थी। आस्था की माफ़ी मांगते ही अरमान को थोड़ी सी राहत मिली, और फिर वो उसकी ओर देखकर बोला, आगे से मुझे बहकाने की या मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, अगर आगे से तुमने मुझे बहकाने की या मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं फिर तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। ऐसा कहकर उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया था और लगभग बेड पर उसे धक्का देते हुए वहां से बाहर निकल गया था। और बाहर आकर वो सीधा अपने स्टडी रूम में आ गया था, और वहां जाकर उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखकर टैप करना शुरू कर दिया था। और रहलहकर उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा था जब वो आस्था के करीब बढ़ने लगा था और वो उसे बेतहाशा चूमना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। लेकिन अब तो उसका गुस्सा उसके हद से बाहर हो चुका था। एक पल बैठकर उसने अपने माथे को बड़ी तेजी से रगड़ा और उसके बाद अपने सर को मसलते हुए ही खड़ा हुआ, और एक एक करके उसने अपने स्टडी का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दिया था। और आखिर में उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि वो उसके करीब कभी नहीं आना चाहती है, उसके साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती है। ये बात रह रहकर अरमान के तन बदन में आग लगा रही थी।